الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج پیر کا دن ہے، اور پیر کے دن ہمارے ہاں تصوف سے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج یہ مکتوبات شریف کا درس براہ راست سن لیا. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ طریقہ بھی صحیح ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو مزید بڑھاؤں گا. تو جس بات کی بھی توفیق ہو جائے تو اس کو اللہ پاک کا فضل اور کرم سمجھ کر اس پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی اس پر عمل کر لیا ہے. دوسری بات، مکتوبات شریف کا درس، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں تو اس نعمت کا بالکل اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے ہمارے سلسلے پر یہ فضل ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنے بڑے اکابر، ان کے مکتوبات شریف، ان کو یعنی سننے کا یا پڑھنے کا یا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ جو مکتوبات شریف ہوتے ہیں یا مواعظ ہوتے ہیں یا ملفوظات ہوتے ہیں، یہ بزرگوں کے عمر بھر کے نچوڑ ہوتے ہیں. یعنی جو بزرگوں نے عمر بھر اپنے ریاضت سے، اپنی محنت سے، اپنی مطالعے سے، اپنے تجربات سے سیکھا ہوتا ہے، تو وہ حضرات اس کو استعمال کر کے مطلب وہ بیان فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی کبھی بزرگوں کی کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے تو اس پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. اور واقعتاً بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سبحان اللہ کیا یعنی مطلب یہ کہ جو ہے نا بہت چیزیں مطلب بیان فرمائی ہے، اور سخت حالات میں جو دین کی محنت فرمائی ہے، اور پھر اس میں جو اصولی باتیں مطلب ماشاء اللہ وہ بیان فرما کر ان کی تشریف فرمائی مکتوبات شریف میں، بہت بڑی بات ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان مکتوبات شریف میں جو علوم اور معارف ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا ویسے ہم ان تک براہ راست رسائی نہیں ہوتی. تو ان حضرات کے مکتوبات شریف میں ہم لوگ جو ہے نا مطلب ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہمیں قدر نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کو اس کی قدر نہیں ہے. تو واقعتاً یہ جو ہمارے مکتوبات شریف کے دروس ہیں، ان کو اگر سن لیا جائے باقاعدگی کے ساتھ تو اس میں بہت فائدہ اور بہت فیض ہے. السلام علیکم حضرت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت و عافیت میں رکھے، آمین. میرا علاجی ذکر ایک مکمل ہو گیا ہے، 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ لا الہ الا ہو، 600 مرتبہ حق، اور 1000 مرتبہ اللہ، اور 5 منٹ کے لیے تصور کرنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار روزانہ ہے. آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ دل پہ دھیان لگایا جائے کہ اللہ اللہ ہو تو وہ محسوس ہو، اس سے کافی فائدہ ہوا اور دل اللہ اللہ کرتا ہوا محسوس ہونے لگا. گو توجہ مرکوز نہیں رہتی مگر کوشش کرتا رہتا ہوں. بالکل ماشاء اللہ، اللہ جل شانہ مزید توفیقات سے نوازے. اور یہ علاجی ذکر جو ہے بہت ہی اونچا عمل ہے. بقول حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ درود شریف عام ذکر سے افضل ہے، اور جو مشائخ جو ذکر دیتے ہیں، اصلاحی ذکر دیتے ہیں، علاجی ذکر دیتے ہیں، وہ درود شریف سے بھی زیادہ افضل ہے، درود شریف سے بھی زیدہ افضل ہے. تو اس کی وجہ حضرت نے ملے ہوئے یہ بتائی کہ اصل بات یہ کہ اس میں اصلاح ہے، اور اصلاح جو ہے نا فرض عین ہے، تو یہ فرض عین کو پورا کرنے کا عمل ہے. لہذا یعنی اس کا جو ہے نا بہت زیادہ یعنی وہ ہے. اور میں خود جو ہے نا اس میں ایک چیز میں مطلب تھوڑا سا یعنی متردد تھا, اور اگرچہ مطلب اس کی گنجائش بھی تھی, لیکن حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی اور الحمدللہ میں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا. وہ یہ بات تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ علاجی ذکر ایسا ہے کہ چونکہ یہ ذریعہ ہے, اور مطلب یہ ہے کہ مسنون نہیں ہے, منصوص نہیں ہے, لہٰذا اس میں ہم ثواب نہ سمجھے تو زیادہ جو ہے نا گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ محفوظ طریقہ ہے, کیونکہ ثواب تو ویسے بھی ہو جائے گا اگر کوئی کام کرتا ہے, لیکن نیت کریں گے تو پھر اس کے لیے ثبوت دینا پڑے گا. یہ میرے ذہن میں یہ بات تھی. تو حضرت نے ماشاءاللہ جب یہ فرمایا تو مجھے اس کی طرف بہت زیادہ یعنی گویا ہو گیا, توجہ ہو گئی, اور پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا. تو پھر ایک صاحب کو حضرت کی زیارت ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو ضرب و جہر ہے, دیکھیں نا کون سمجھا رہے ہیں, حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہاں جہری ذکر نہیں ہے جن کے ہاں جہری ذکر نہیں ہے, لیکن حضرت سمجھا رہے ہیں کہ جو ضرب و جہر ہے اس میں تو ثواب نہ سمجھا جائے کیونکہ یہ اضافی چیز ہے اور ضرورتاً ہے, لیکن جو اس کے ذکر ہے ذکر والا حصہ تو وہ تو ثابت ہے, جیسے لا الہ الا اللہ بھی ثابت ہے, لا الہ الا اللہ بھی ثابت ہے, حق بھی ثابت ہے قرآنی میں ہے نا تینوں, ہاں, اور جو ہے نا وہ اللہ بھی ثابت ہے, تو اس میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے. ہاں جی, اس میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے. تو گویا کہ یہ میرے یہ اشکال میرے اشکال بھی دور ہو گیا. تو یہ پھر دو چیزیں مل گئیں. اب جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نے جیسے فرمایا ہے کہ مشایخ کا دیا ہوا ذکر جو ہے یہ ماشاءاللہ درود شریف سے بھی افضل ہے, کیونکہ اس سے انسان کا دل بنتا ہے اور دل تمام چیزوں کا ظاہر ماشاءاللہ بادشاہ ہے, لہذا دین پر چلنا اس کے ذریعے سے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے برکات نصیب فرما دے. ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں دو خود سر بچوں کو لے جا رہی ہوتی ہوں, اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جد امجد ہے وہ دیوار کے ساتھ تشریف فرما ہے, جیسے زیادہ کاکا صاحب میں پتھروں کے چھوٹے دیوار ہوتے ہیں, مجھے اشارہ فرماتے کہ ادھر آؤ, پھر ایک بچے کا کان پکڑتے ہیں, ایک دم مجھے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان حضرت سے فیض ایک بچے سے ہوتا ہوا مجھے آتا ہے اور پھر دوسرے بچے کو جاتا ہے, اور جب کاکا صاحب مطلب غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ان حضرت میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. تو اس کا میں نے پھر جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے ذریعے آپ کو بی کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض مل رہا ہے, اور شریر بچے جو ہے وہ نفس اور خراب دل ہیں شریر بچے جو ہے وہ نفس اور خراب دل ہیں, ان کی درستگی پر آپ کو فیض مل رہا ہے. چونکہ اس میں ایک یہ کہ کاصب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کا کان پکڑا ہوا ہے, دو کا نہیں ہے. ہاں جی, آپ خود کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایک بچے کا کان پکڑا, دو کا نہیں ہے, اور کان پکڑنا سرزنش ہوتا ہے جو مجاہدہ ہے. ہاں جی, اور مجاہدہ نفس کا ہوتا ہے. ہاں جی, اور اس کے خراب دل کو بھی اس کے ذریعے سے صاحب نفس کو, کیونکہ دوسرے بچے کو بھی فیض جا رہا ہے. ہاں جی, ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, اور اس سے ہوتے ہوئے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہی طریقہ برائے سلوک پرانے سلوک کا تھا, یہی طریقہ پرانے سلوک کا تھا کہ نفس کا علاج پہلے ہوتا تھا بعد میں دل کا ہوتا ہے. ہاں جی, اور اس سے سالک کی اصلاح ہو جاتی تھی. تو مطلب یہ کہ यानी पूरे एक तरीका हुआ है कि समझाया गया कि आकाश ब्रह्मतुल्लाले चूंकि जारे इस मैदान के बहुत बड़े मतलब होते हैं, तो ये मतलब जाहिर है इनको फेस तो जा रहे हैं, सिलसिले की बरकत है हमारे सिलसिले पे, बुजुर्गों की नज़र तो है, तो उनको दिखा दिए कि प्रोसीजर क्या होता है। हाँ जी, कि जो है ना मतलब ये है कि नफ्स का जो मुजाहिदा है ये अव्वल है, यानी वैसे मतलूबन अव्वल है, बाकी तरीके के लिहाज से कोई किस तरह करते कोई किस तरह करते हैं। जैसे नक्शबंदी हजरात पहले दिल की जो करते हैं जज्ब पैदा करते हैं, फिर उसके बाद उसके ज़रिए से नफ्स का इलाज करते हैं, तो वो सिर्फ एक टेक्निक है, असल इलाज जो है ना वो तो दिल का पहले है ही, कि मतलब दिल को काबू करना होता है, क्योंकि हमारा जो नफ्स है यानी उसकी इस्लाह पर माशाल्लाह बाकी इस्लाह यानी मौकूफ़ है। कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, लिहाजा ये करना होता है। अलबत्ता ये है कि चूँकि तरीक़ाकार हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है, लिहाजा बाज़ रात जज्ब कस भी इसके लिए हासिल करते हैं और फिर इसके बाद इसका इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट हजरत, अल्लाह ब्लेस द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यू एंड ऑल योर लव्ड वंस ऑलवेज इंशाल्लाह। हजरत फॉरगिव मी फॉर आस्किंग व्हाट आई एम अबाउट टू आस्क यू, आई नो यू डू नॉट रिसीव कश्फ, बट यू से यू रिसीव कश्फ फॉर द सेक ऑफ योर मुरीद्स when they need it, and I am hoping you can help me. Throughout my life I have periods of time where for a few weeks I will do everything from reading all five prayers plus tahajjud, all my zikr, lots of Quran reading, and I would even keep very close eyes on all my thoughts and feel so close to Allah. I would be in this state for sometimes 2, 3, or 4 weeks. Then suddenly I will stop reading Quran, then start missing prayers. My thoughts would start to think wrong things. And within 2 days I would stop doing everything. I will suddenly feel so far from doing any good and feel like just staying at home doing nothing. I could spend 2 or 3 weeks without praying, doing any zikr at all. Then I will start again to start praying, and soon good deeds again and again, start doing everything for a few days or weeks, and then again suddenly everything will stop. I have done this my whole life, and this is why I do not manage to keep all my ilaji zikr going as well. Would you be able to help diagnose my problem? It's because my intentions are not pure and I do not want to be a good Muslim enough and still want too much worldly pressures. Pleasures. Is it because I try and do too many things and get tired? But if I long to a few things like pray 5 times and do not other deeds, I still stop doing this after a few weeks. Is it because every time I start to do well, I start feelings like a buzurg and Allah takes away my deeds to remind me I am nothing, even though I try very hard to be grateful and not think of myself as anything? Even when I am having a long day, I will do well all day. But then, as soon as I am tired at night, I will stop doing everything like missing Isha and Fajr prayers because I feel too tired in my mind. But then in the morning, I will feel good again and want to pray again. This constantly being very good for a few weeks and then very bad and doing nothing for so many years makes me very depressed. Sorry for the long message. Please pray for me, Hazrat. I love you and how you talk to your murid and give us time. And I feel so ashamed that I can't do anything in a steadfast way. Take care, Hazrat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Akbar. Is pure khat ka jo nichod hai, jiske liye kisi kashf ki zarurat nahi hai, matlab jaise ki unne farmaya ki mujhe kashf nahi hota, yaqinan sahi hai. اور یہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ مطلب ضرورتاً کشف ہو جاتا ہے, یہ اصل میں حضرت حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے بیان فرمایا تھا, جو انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی شے کو کشف نہ بھی ہوتا ہو لیکن مریدوں کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اتنا کشف اللہ تعالیٰ کرا دیتے. تو یہ تو مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ کشف کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اطلاع ہو جائے یا مطلب جو معلوم ہو جائے, اور یا پھر یہ ہے کہ علمی طور پر کوئی بات منکشف ہو جائے. علمی طور پر مثال کے طور پر مجھے اب کشف تو نہیں ہے اس میں, کوئی چیز مجھے کشف اس کا نہیں ہو رہا, لیکن مجھے علمی طور پر ایک بات سمجھ آ رہی ہے جس میں بیان کروں گا تو آپ خود بھی سمجھ لیں کہ ہاں بالکل ایسے ہی. اس کے لیے کسی کشف کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں غیر مستقل مزاجی ہے, یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یعنی نفسیاتی عارضہ ہے کہ غیر مستقل مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ کبھی سیر کبھی معاشا, کبھی سیر کبھی معاشا, اس قسم کا سیر چلتا رہتا ہے ان کا چیز. تو یہ ایک بیماری بھی ہے, کمزوری بھی ہے, لیکن نفسیاتی ہے. مطلب یہ اس کا روحانیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ ایک نفسیاتی بیماری. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نفسیاتی علاج بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں کہ کسی شیخ صاحب اس کا علاج کر لیں, آپ اس کا نفسیاتی علاج کر سکتے ہیں کہ آپ کو سٹیبلٹی حاصل ہو جائے, مطلب سٹیبل کنڈیشن پہ آپ آ جائے. وہ جو بار بار آپ اپنے فریم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں, تو آپ کے اندر دوبارہ آنے کی جو صلاحیت ہے یہ تو بہت مثبت ہے, اس کی تو قدر کرنی چاہیے, تو ختم نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو بار بار آؤٹ ہونے کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یعنی اس کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں. اس کے لیے کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جیسے عرض کیا نا, اس میں یہ والی بات ہے کہ انسان, حضرت تنوی حسین نے بھی اس پر بات فرمائی ہے, بعض لوگ اپنے اوپر اپنے سے زیادہ بوجھ ڈالتے جتنا وہ اٹھا سکتے, نتیجتاً وہ تھک جاتے. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ تدریج کا خیال نہیں رکھتے, گریجولی جانا اس کا خیال نہیں رکھتے. ان کا یوں سمجھ لے تعجیل کے شکار ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر تدریج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سسٹین کرنے کی جان نہیں ہوتی. نہ جب کبھی کام شروع کرتے ہیں تو بہت ہیوی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اپنا آئیڈیل آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, بہت آئیڈیل ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اور چونکہ اس پہ چل نہیں سکتے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب ہمارے بزرگوں نے اس پر بات کی ہے, تنویر حسین نے اسپیشلی اس کو مطلب جو ایڈریس کیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو مشائخ جو ہے نا مطلب یہ کہ بعض چیزیں چھوڑا دیتے ہیں, تو لوگ سمجھتے دیکھو نا ہمیں اچھے اچھے کاموں سے روک رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے اچھے کاموں سے روک نہیں بلکہ اچھے کاموں پہ اسٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں. उनका मकसद रोकना नहीं होता, उसको स्टेबल बनाना होता है। तो ये मतलब जाहिर है कि ये इसी वजह से कि लोग फिर उसको चूंकि पूरा नहीं कर सकते। अब आपने कुछ ना कुछ काम कर लिया, हाँ जी, यानी कुछ तो आपने काम कर लिया, लेकिन जो है ना मतलब ये है कि बाद में आपने बिल्कुल छोड़ दिया। तो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ करना बेहतर है न करने से। तो अब क्या तरीका अख्तियार किया जाए? तो इसमें हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि कौन सी चीज एट एनी कॉस्ट खत्म नहीं होने चाहिए, कौन सी चीज है जिसके बाद मतलब यह कि उसको हम ख्याल रखें कि वो कम नहीं होना चाहिए, और कौन सी चीज है जिसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए। मतलब ये तरतीब हमारे जहन के अंदर हो। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा, अभी हजरत मुजाहिद साहब की जो बात गुजरी है उसको बुनियाद बनाकर इलाजी जिक्र को किसी भी वक्त नहीं छोड़ना चाहिए। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, अगर बचना है तो, नहीं बचना है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं, फिर जो करना चाहते हो खुद कर लो। तो इलाज जिक्र किसी भी वक्त छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी वजह दवाई। इंसान छोड़कर डॉक्टर के पास जाए कि मुझसे दवाई नहीं कही जा रही, तो डॉक्टर क्या करे, उसके पास रहते ही क्या है? उसको और आपके दरमियान सिर्फ एक ही चीज है और वो है दवाई और गाइडेंस, इसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं है। वो आपको जबरदस्ती मोड़ तो नहीं सकते। तो आइंदा के लिए मुझे, मैं आपसे ये ना सुनूं कि आपने इलाज जिक्र छोड़ा है। इलाज जिक्र किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आम, और मेरे सारे मुरीद उसको कान खोल कर सुन ले। एट एनी एट नो कॉस्ट वन शुड लीव इलाज जिक्र, क्योंकि बुनियाद है सारी चीजों का, जिस पर आपकी बेहतरी डिपेंडेंट है, मुनहसर है। इसको छोड़कर आप मेरे पास फिर ना आए, मेरे पास कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कि मैं किसी को सिखा दूं। सबसे पहले मैं यही चीज कहूंगा, तो इलाज जिक्र बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और वो इतना थोड़ा होता है कि बाकी कामों के मुकाबले में कोई इंसान कर सकता है, और उसमें हम तदरीज करते हैं, हम जो है ना मतलब इसको यकदम नहीं करते। मेरे ख्याल में तमाम सिलसिलों के साथ कंपेयर कर ले, हमारा जिक्र सबसे थोड़ा है, हम इतना ज्यादा जिक्र देते ही नहीं है। हम तो हैरान हो जाते हैं, बाद लोग तो बहुत बहुत ज्यादा जिक्र देते हैं, दो दो तीन तीन घंटे वो कराते हैं, हमने तो कभी इनसे किसी से इतना नहीं कराया। हाँ जी, तो इलाजी जिक्र जो होता है वो उसको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा अगर बचना चाहते हो। दूसरी बात, इलाजी जिक्र तो है इलाज, लेकिन इस तरह माशाल्लाह कुछ चीजें अल्लाह ने लाजिम करार दी है कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये फराज वाजिबात है। हमने पहुंचना तो उधर ही है जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया है, इलाजी जिक्र भी इसीलिए है या इलाजी मुजाहिदा भी इसीलिए है कि आप अल्लाह की बात तक पहुंच जाए। तो अल्लाह जल्ल शानू ने जो चीजें लाजिम करार दी है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, मसलन नमाज, मसलन रोजा, मसलन जकात, मसलन हज, मसलन जो मल्ले मामलात लाजिम है वो भी इतने ज्यादा नहीं है। हम जरा अपने दुनियावी चीजों के साथ उसको कंपेयर कर ले, वो बहुत थोड़े। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने सारे लोगों को जिन्नात तो इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। आप मुझे बताओ नमाज, पांच वक्त की नमाज के टाइम कैलकुलेट कर लो, फिर जो है रोजो का टाइम कैलकुलेट कर लो, फिर हज का टाइम कैलकुलेट करो, फिर माल पूरा देखकर उसके अंदर जकात को कैलकुलेट करो, कितना परसेंट बनता है। खुदा के बंदे क्या करना चाहते हो? ये जन्नत को इतना आसान तो नहीं है कि आप जन अपनी मर्जी करेंगे और जन्नत में चले जाओगे। हाँ जी, कितना आप कर रहे हैं मुझे बताओ ना, आपने नमाज पे कितना वक्त आपका लगता है, घंटे कितने लगते हैं आपके? पैदा किया अल्लाह पाक ने आपको इबादत के लिए, और आप जो है ना मतलब ये कि 24 घंटे में एक घंटा लगता है उस पर भी आप कहते हैं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा कर रहा हूं। ये सोच की गलती है, उसको खत्म करना चाहिए, इस गलती को खत्म करना चाहिए। आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर है कि आप दूसरी चीजों को कम अज कम तरीके से अकोमोडेट कर ले, ये मैं कहूंगा। तो नमाज जो जरूरियात जो फराइज वाजिबात है इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, उसके बाद जहां तक नफली कामों का ताल्लुक है, वो तो हम कहते भाई शेख से पूछ पूछ के नफल शुरू करो। अगर आपने नवाफिल को सस्टेन करने की वो नहीं है तो फिलहाल फराइज वाजिबात पर इक्तफा करो, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहो तो आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जितना जितना काम करोगे उससे मजीद हौसला बढ़ेगा और हम मजीद काम कर सकेंगे। तो एक तो ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि नवाफिल के अंदर गुंजाइश है, मुस्तहबात के अंदर अल्लाह ने बड़ी गुंजाइश रखी है। मुस्तहबात कई किस्म के होते हैं, इबादात के मुस्तहबात होते हैं, मामलात के मुस्तहबात होते हैं, माशरत के मुस्तहबात होते हैं, अखलाक के होते हैं। इन तमाम जो मुस्तहबात है वो हर एक सारे नहीं कर सकता, तो किसी को अल्लाह पाक ने ज़र्फ दिया होता है वो इबादात के मुस्तहबात में ज़्यादा आगे चले जाते हैं, कुछ मामलात के मुस्तहबात में आगे चले जाते हैं, माशरत और अखलाक के मामलात में मुस्तहबात में आगे चले जाते हैं। तो इसमें तबीयत का फ़र्क होता है, तो बुज़ुर्ग इन चीज़ों को जानते हैं। इस वजह से इनमें से जो जिस लाइन पर भी जा रहा है उनको इसी लाइन के बारे में ज़्यादा टीच करते हैं। क्यों? वक्त आए अल्लाह पाक से वो अपना ताल्लुक इसके ज़रिए से बना रहे, लिहाजा कोई मसला नहीं है। हाँ जी, तो ये मुसाबात के अंदर गुंजाइश है, उसको बतदरीज बढ़ाना चाहिए, बतदरीज बनाना चाहिए। बाकी ये है कि जो जैसे मैंने अर्ज़ किया फ़राइज़ वाजिबात, तो इस तरह इसका मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ तक कि मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि भाई फ़र्ज नमाज जो है इसका दोनों तरीके आपको सीखने चाहिए। फ़र्ज नमाज का इतना तेज़ भी हो कि आप 4 रकात 2 मिनट में पढ़ सकें, ऐसा भी आपको आता हो तरीका, और जब वक्त हो तो 10 मिनट में आप 2 रकात पढ़ सकें, ये भी आपको आता हो। टाइम हो ज़्यादा टेर लगाओ, क्यों? अल्लाह की मुलाकात है, मामूली बात तो नहीं है, अल्लाह के साथ मुलाकात है, अल्लाह के सामने कड़ा होना है। भाई मुझे बताओ, जहां से मिल रहा हो उसके सामने कितनी देर कड़ा होना चाहिए? जहां से मिल रहा हो, दुनिया के लिए हम क्या करते हैं भाई? सौदा जिसका बिक रहा हो तो क्या ख्याल है, वो कारोबारी शख्स, वो ताजर, वो तकता है इससे? हाँ जी, जिसकी दुकान पे ज्यादा रश होता है तो वो तकता है, वो कहते हैं यार कमाल है यार, मेरे पास इतने लोग क्यों आते हैं, मुझे तकाते हैं। कभी इस तरह सुने? हमने तो इस तरह नहीं सुना। तो इस तरह जब अल्लाह पाक से आपको मिल रहा है, टाइम भी आपके पास है और मतलब यह कम ले सकते हो, तो फिर ऐसा भी कर लो। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आप सफर में हैं तो सफर के हालात होंगे, आप हजर में हैं तो हजर के हालात होंगे, जल्दी में हैं तो जल्दी के हालात होंगे, आपके पास टाइम है तो उसके मुताबिक। अब अगर आप सबको एक ही तरह कर रहे हो तो फिर एन मुमकिन है कि आपके पास अगर टाइम कम है और आप खामखा उसको उतना ही लंबा करना चाहिए करना चाहते हैं जितना कि यानी वो आम जिसको कहते हैं मतलब रिलैक्स हालात में होता है, तो आप खुद ही अपने साथ मसला कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मसला तो होगा। तो हम तो यहाँ तक बताते हैं, शरीयत ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है उन इजाज़त से फ़ायदा उठाना रुख्सत कहलाता है। تو اس وقت رخصت سے فائدہ اٹھانا یا کلمندی ہوتی ہے. اور عزیمت کی ہمارے کوئی جات نہیں دیتے. عزیمت پسندیدہ چیز ہے لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا. یعنی گویا کہ جیسے ہر شخص مستحبات میں بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتا, تو اس طرح عزیمت میں بھی ہر ایک شخص زیادہ نہیں جا سکتا. تو ہم ہر ایک شخص کو عزیمت کی بات نہیں کہتے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہر شخص کو ایک طریقے سے بات نہیں بتائی جاتی جس کی جتنے اوقات ہیں. ہاں ایک البات ضرور میں کروں اور بدوان کے دون کے دوہل کہتا ہوں کہ جتنے اوقات آپ کے ہیں پھر اتنے اوقات کے حساب سے پھر ترقی کو بھی اپنے لیے ایکسپیکٹ کریں. یہ نہیں کہ اپنے اوقات اپنی کمزوری کا خیال ہو کہ میں بہت کمزور ہوں اور پھر جو اللہ والے ہیں جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور نتیجہ ان کی طرح آپ مانگے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ باتیں تو نہیں ہوتی, دنیا میں بھی نہیں ہوتی. ایک شخص ہے جو دکان پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ صبح سویرے پہنچتا ہے اور کام شروع کرتا ہے اور یہ اور وہ. اب ایک کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے اور دوسرے کو اپنی کمزوری کی وجہ سے کم ہو رہا ہے, تو کیا اس کے ساتھ لڑ پڑے گا کہ آپ کو فائدہ کیوں زیادہ ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو اپنی محنت ہے. تو ظاہر ہے جتنی آپ محنت کر رہے اتنے ہی ایکسپیکٹ کریں. یہ ایک بات ہے. تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے میں نے جو ابھی جو بات کی ہے, سب سے پہلے بات کہ اپنے علاجی جو اعمال ہیں اس کے اندر تو بالکل کمی نہیں لانی چاہیے. اس کو تو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایٹ اینی کاسٹ میں کروں گا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کم از کم میں اس وقت موجود تھا, میں نے خود ان سے سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا اے بھائی دوستو ہم بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں, مشائخ بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں, آپ کو دونوں ذکر کرنے چاہیے, آپ کو دونوں ذکر کرنے چاہیے, لیکن کبھی اگر ٹائم تھوڑا ہوا اور آپ صرف ایک ہی کر سکتے ہوں تو پھر مشائخ والا ذکر جو ہے نا وہ کر لیجئے گا, ہمارا ذکر اس وقت مؤخر کر لیں. اس کی وجہ ہے کہ مشائخ کا دیا ہوا ذکر یہ علاج ہے, اور جو ہمارا دیا ہوا ذکر ہے یہ ثوابی ہے, غذائی ہے. اور غذا اور علاج کا جب مقابلہ ہو جاتا ہے آپس میں تو علاج کو فوقیت حاصل ہے. کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھایا, کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھایا. آج کل غز جو ہے نا وہ علاج ذکر پر ہی پیرا جاتا ہے, جب ٹائم نہیں ہوتے تو اس کو چھوڑ دیتے. خدا کے بندو ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچو, کیا کر رہے ہو؟ علاج ذکر کسی حالت میں بھی نہ چھوڑو, دوائی کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جاتی, اور اگر چھوڑی جاتی تو ڈاکٹر کے کنسلٹیشن پہ ہی چھوڑی جا سکتی ہے, اس سے پوچھ کے چھوڑی جا سکتی ہے. وہ اگر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی, اگر آپ یہ دوائی نہیں کھا سکتے چلو دوسری دوائی دیتا ہوں, وہ تو ہو سکتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کون سی دوائی چھوڑ کے کون سی دی جا سکتی ہے. اگر مریض ہی فیصلہ کر لے کہ بھائی یہ دوائی میٹھی ہے میں لے لیتا ہوں, یہ دوائی اس میں سے میٹھی, اس یہ دوائی اس, اور سب میٹھی میٹھی دوائیاں جمع کر لیں اور کڑوی دوائیاں جو ہے نا اس کو رہنے دیں, تو کیسے مطلب وہ اپنے علاج ایکسپیکٹ کر سکتا ہے؟ اپنے طور پر اس کو نہ چھوڑنا چاہیے نہ کرنا چاہیے. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ علاج ذکر کے بارے میں ایز پرسکرائب بائی دی فزیشین ساری دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے, ایز پرسکرائب بائی دی فزیشین یہ سارے دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے. تو دوائیوں کے ساتھ دوائیوں والا معاملہ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ اپنی طبیعت والا معاملہ نہیں کرنا. دوائی پر طبیعت کو ترجیح نہ دو بلکہ طبیعت پر دوائی کو ترجیح دو. ہاں جی, دوائی کو طبیعت پر ترجیح دو. کیوں؟ طبیعت یہ تو آپ کے ساتھ ہے, یہ تو مطلب ظاہر ممکن ہے کہ آپ بعض چیزیں پسند ہی نہ کریں, لیکن وہی آپ کے علاج ہو, مجبوری ہوگی, مطلب ظاہر آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اسپتال میں ذرا چلے جاؤ نا, اسپتال میں دیکھو کہ گرمی جو کپڑے انسان پہننے کو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتے کہ پہنے, اسپتال میں ان کو پہنا دیا, اس کو پہننا ہوں گے, اس کو سب لوگ مانتے ہیں. ہاں جی, جو مطلب یہ ہے کہ وہ जो जो चीज उनको बताया जाए सबको करना पड़ता है, वरना फिर डॉक्टर इलाज नहीं करते। हाँ जी, डॉक्टर इलाज नहीं करते, बल्कि यहाँ तक कि जो ऑपरेशन किया जाता है तो उनसे पहले से लिखवा लिया जाता है, अगर इसमें मौत वाक्य हो गई तो आपकी तरफ से कोई वो नहीं होगा। यहाँ तक बात तो चलती है। तो जब इस किस्म की बात है तो फिर कम अज कम ये वाला इलाज जो रूहानी इलाज है, ये कोई मुफ्त के साथ ताल्लुक रखता है कि आपकी मर्जी के मुताबिक होगा? इसमें भी आपकी मर्जी नहीं चलेगी अगर फायदा हासिल करना चाहते हो। फर्क सिर्फ दोनों में एक है, और मैं भी ये भी बाबा के दौर कहता हूं कि वहां पर भी डॉक्टर आपसे कहते अगर आप इलाज नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, और पैसे आपसे लेते, पैसे आपसे लेते अगर आपने इलाज करने तो पैसे देंगे, नहीं करना चाहते पैसे नहीं लेंगे, और आपकी मर्जी है। यहां पर पैसे पहले भी नहीं लेते, बाद में भी नहीं लेंगे, लेकिन कहना तो उनको यही है अगर आप अपने इलाज नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। हमारे स्कूल में एक दफा लड़कों ने स्ट्राइक किया था, हमसे सीनियर लड़कों ने स्ट्राइक किया था, वो चले गए थे, बस पता नहीं किसी स्ट्राइक बाइक का सुना होगा तो लड़कों में वो आ गया, तो हमने नहीं पढ़ना, चले गए थे। खैर वो दिन तो सारे बाहर रहे, 2000 कब तक स्ट्राइक पे रहते, तो खुद ही आ गए, जो है ना मतलब ये कि हेडमास्टर ने कहा मैं इनको निकाल लेता हूँ स्कूल से, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़े। उसने सस्पेंड ले लिया, तो अगले दिन वो आ गए क्योंकि वालदेन ने उनको मजबूर कर लिया, वो आ गए। तो हेडमास्टर ने बड़ी सख्त तकरीर की, मतलब उसमें असेंबली में, और फिर उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, ये बच्चे हैं, गलती इनने की है, मैं माफ़ करता हूँ, मैं इनको दोबारा ले लेता हूँ, लेकिन सजा इनको ज़रूर दूंगा। तो हर बच्चा आता और उसको आठ आठ घंटे तक, आठ डंडे जो है ना उसको मारते, तो सारे बच्चों को जो बाहर गए थे उनको आठ आठ डंडे रसीद किए। तो एक बच्चे उसने चुपके से कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, उन्होंने कहा बिल्कुल बैठा बैठे बस तरह लो, जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, मतलब ये कि उसको कुछ नहीं कहा, तो बस अच्छा बेटा बस उठा लो जाओ, शाबाश शाबाश, बस यही तरीका होता है, यही तरीका होता है। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो उसको जबरदस्ती तो आप नहीं पढ़ा सकते। हाँ जी, लेकिन पढ़ना चाहते हो फिर तो डंडे भी लगते हैं, फिर तो डिसिप्लिन होता है, फिर तो सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से मतलब यह है कि ये मैंने डॉक्टर की मिसाल भी दी, मैंने उस्तादों की मिसाल भी दी, कारोबारियों की मिसाल भी दी, ये सारे हमारे दुनियावी चीज़ें हैं, फिर अपने फ़ायदा नुकसान भी है। अगर कोई अपना फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो उसके तरीके भी हैं, कोई अपना नुकसान करना चाहता है तो उसके अपने वो तो हैं। लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी, और जो है ना मतलब यह है कि आइंदे के लिए इसी उसूल पर आप जो है ना चलेंगे कि इलाज जिक्र तो किसी हालत भी नहीं छोड़ेंगे, और जो अल्लाह पाक ने बताए हैं वो अल्लाह पाक ने जिनको लाजमी करार दिया है उनमें ना मुझे अख्तियार है कि छोड़ने का ना आपको अख्तियार छोड़ने का। हाँ जी, तो ये आप मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और फिर इसके बाद बाकी चीज़ों में आप मशवरे के मुताबिक चलेंगे, न अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डालेंगे, उन्हें जितना उठा सकते उसे इनकार करेंगे। बस ये मेरे ख्याल में स्टेडफास्ट रूल बन गया, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमा दे अमल की। السلام علیکم حضرت جی، حضرت جی آج صبح کی نماز کے انتظار میں میری نماز غیر ارادی طور پر قضا ہو گئی، آدھا گھنٹہ تقریباً رہتا تھا اور الرجی کی وجہ سے میں بے چین تھا، منہ پر چادر ڈالی اور خیال تھا کہ اس حالت میں تو نیند ویسے بھی نہیں آئے گی، لیکن الٹ ہوا، ہوش میں آیا تو نماز نکل چکی تھی، اللہ مجھے معاف کرے۔ कोताहियों पर माफी का तलबगार हूँ। देखिए हादसा हादसा होता है और हादसे का नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान के होते हुए हादसे से एक्सपीरियंस भी हासिल होता है। तो जिसने हादसे में नुकसान किया और एक्सपीरियंस से फायदा उठाया, जिसने हादसे से नुकसान किया उठाया और एक्सपीरियंस से फायदा उठाया, तो कम से कम उसने हादसे के तमाम नुकसान को रहने नहीं दिया बल्कि इससे कुछ फायदा भी उठाया। तो इस वजह से ये आपके साथ जो हादसा हुआ है इसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हासिल हुआ है, और वो एक्सपीरियंस ये है कि अपने नफ्स पे कभी एतमाद ना करें, नफ्स पे कभी एतमाद ना करें। ये नहीं आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लिहाजा आप जो है यानी इन तमाम चीज़ों में अलर्ट रहें। मैं आपको सुनाता हूँ, हम आ रहे थे हरम से मतलब जो ना वो हज से जहाज़ में, जहाज़ में वज़ू सबसे मुश्किल काम होता है और नमाजों की टाइमिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो उस वक़्त जो है ना मतलब ये है कि जहाज़ वाले भी उनकी मजबूरियाँ होती हैं, लिहाजा बाज़ दफ़ा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उससे खुश होते हैं, उनसे खुश होते हैं, और हालात भी इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि लोगों को नींद आ जाए। हाँ जी मतलब ये वाली बात, शटर्स बंद करवा देंगे और खाना खिला देंगे और उस तरह ताकि वो सो जाए, ताकि मतलब ये कि मसला ना करें। ये होता है क्यों, वजह क्या है कि लोग जिसको कहते हैं ना वो गलत तरीक़ों से वजू करते हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर नुकसान हो जाता है, जहाज़ में तो हर चीज़ महदूद होती है, तो वो इनके एक्सपीरियंस की वजह से तशद्दुद करते हैं और ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं कि लोग नमाज ना पढ़े, हालांकि उनको इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है। तो इंसान के पास जब नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें इंसान को खुद ही सब कुछ करना होता है, यानी इंसान को अपनी जिम्मेदारी पर सब कुछ करना होता है। तो इस वजह से जो मेरे साथी होते हैं मैं उनको बहुत अलर्ट रखता हूँ कि भाई अपनी नींद को भगाना है और सोना नहीं है, सोना नहीं है, यानी अपनी नींद को कंट्रोल करने की सलाहियत इंसान में होनी चाहिए। और इसके लिए फिर मैं तरीके भी उनको बताता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। तो उसमें यह है कि वो जो है ना मतलब यह है कि इस तरह बैठना कि अगर ऊंघ आ जाए तो नींद ना, जिसको कहते हैं वजू ना टूटे। हाँ जी, एक तो ये वाली बात होती है, दूसरा अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखना कि आपको नींद ना आए, मतलब इस किस्म की बात हम मतलब वो करते हैं उसमें। तो उसमें मुश्किल तो होता है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ बच जाती है, और इसको नमाज कहते हैं, और इस वक्त उस नमाज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं वो नमाज जब आप पढ़ लेते हैं तो वो नमाज आपके लिए यूँ कह सकते हैं आपके इस्लाह नफ्स का बहुत बड़ा जरिया होता है जो कभी कभी मिलता है। उस वक्त अगर आप उस नमाज को पढ़ लें और नमाज को ज़ाया नहीं होने दें तो आपकी नफ्स की बहुत सारी इस्लाह उसके अंदर हो जाती है। क्यों, मुजाहदा होता है ना, मुजाहदे के नमाज होता है। आमतौर पर जो जिक्र के अमाल होते हैं, जिक्र जैसे अमाल होते हैं उसमें सिर्फ दिल का फ़ायदा होता है, लेकिन जब इस किस्म की रुकावट होती है और मुश्किल होते हैं तो उसमें फिर नफ्स का इलाज भी होता है। हाँ जी, तो ऐसी सूरत में अगर ये नमाज कोई पढ़ ले तो माशाल्लाह उनके बरसों की जो तरक्की हो जाती है। हाँ जी, तो ऐसे मौके पर इंसान स्टेबल रहे बड़ी बात होती है। तो ये जो है ना मतलब ये है कि अगर आपको भी कभी इस किस्म के मसले पेश आ जाए तो उसको आप उस माने में ले लो कि अब मेरे लिए माशाल्लाह नफ्स की इस्लाह का बहुत ज़बरदस्त इसमें एहतमाम हो गया कि मैं इसको किसी हालत में अब ना छोड़ूं, बल्कि उसके लिए मैं अलर्ट रहूं, और मैं जो है ना मतलब ये कि इस नमाज को तो मैंने ज़रूर पढ़ना है। ये नमाज मेरे बरसों की ज़बरदस्त नमाज है जिसमें मेरे लिए रूहानी तरक्की है और मुझे मेरा बहुत बड़ा प्रोग्रेस है, तो मैं क्यों ना इसको हासिल कर लूँ। तो इसमें हिम्मत करनी पड़ती है। तो बहरहाल अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ऐसे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के आइंदा उससे बचना चाहिए। और हमारे सिलसिले का मशहूर फार्मूला है कि जो नमाज छोड़ देता है यानी मतलब कज़ा हो जाए तो उसकी सज़ा है 3 रोज़े रखना। हाँ जी, तो 3 रोज़े भी रख लें, क्योंकि ज़ाहिर मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाज को कज़ा करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो इसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। तो पनिशमेंट जो है ना, मतलब उसकी यही है कि 3 रोज़े रख लें। या करीम, एक साहब ने पूरा अपना खत लिखा है, मतलब मैसेज लिखा है, आखिर में लिखा है, नाम लिखना भूल गया था, बहुत माजरा चाहता हूँ। चूल्हे में आपके इस पैगाम की बरकत से लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि बहुत सारे साथी ये गलती करते हैं कि वो जो पैगाम देते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसमें नाम नहीं लिखते। ये एक बुरी आदत है, एक बुरी आदत है। इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहिए। जब भी कभी कोई खत लिखो या कोई टेक्स्ट लिखो तो ये बोझ किसी पे ना डालो कि आपके बारे में सोचने लगे कि कौन है। हाँ जी, आप उसको अपना नाम खुद बताएं। दूसरी बात यह है कि ये आम तौर पर जब किसी का हमारे पास होता है नंबर होता है, तो नंबर तो मैं अपने बेटों का भी नहीं, यार मुझे नहीं है। सही बात मैं रख सकता हूँ, मुझे अपने दोनों बेटों के नाम सेल नंबर नहीं मालूम, यानी याद ही नहीं है। अगर मैं उनको नंबर मिलाना चाहूँ तो मुझे देखना पड़ता है। तो जब नंबर मुझे बेटों के भी नहीं मालूम, तो मुझे बताओ बाकियों के मुझे कैसे मालूम हो गए। ये नंबर से तो मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि किसका होगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो अब मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं आपके वो जो है पूरे देख के पीछे तक जाके देखूं कि कहीं पर तो आपने नाम लिखा होगा, तो बस हजरात ने तो कहीं पर भी नहीं लिखा होता। तो ये मजाक नहीं है अपने शेख के साथ। हाँ जी, इतना मतलब जाना, मतलब जाना इंसान इतनी भी जिम्मेदारी ना समझे कि मैं उसको इस तकलीफ में ना डालूं और मैं अपना नाम बताऊं। और इस पर बाकायदा सुन्नत में तंबीह है आप सल्लम की तरफ से। आप सल्लम तशरीफ फरमाते तो एक साहबी बाहर से आए, तो नॉकिंग की, तो आपसे हमने पूछा कौन, तो उसने कहा मैं। तो आपसे सबने तंबीह फरमाया, मैं ये क्या होता है, नाम बताओ कौन है। क्योंकि आवाज से तो बात जरूरी नहीं कि किसी को पता चले, हालांकि आवाज से ज्यादा पता लगने का इम्कान है वह मुकाबला इस टेक्स्ट से पता लगने का। हाँ जी, लेकिन आप सब ने इस पर भी तंबीह फरमाई कि मैं क्या होता है। हाँ जी, नाम बताओ क्या हो, कौन हो, तो कोई आज तो ये मतलब है कि तारफ करना चाहिए अपना, यही असल जरूरत है। पहले बताओ मैं कौन हूं, शुरफा का तरीका यही है कि जब भी किसी से आप बात करें, टेलीफोन पर बात करें, तो पहले कलाम आप कहिए अस्सलाम वालेकुम, मैं फला बोल रहा हूं, ये पहला कलाम आपका ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तो खैर, सलाम तो मसनून अमले। हाँ जी, उसके बाद फिर पहले कलाम क्या होना चाहिए, मैं फला बोल रहा हूं, ताकि कोई टेंशन की बात ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन की बात ही ना रहे, पहली पहली बात पे हो जाए। तो इससे इंशाअल्लाह अजीज आपको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू, इसमें लिखा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात। अस्सलाम वालेकुम तो पूरे लिखा है व रहमतुल्लाह बरकात को WRW भी लिखा है। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर सलाम के तीन सूरतें हैं, आप कहें अस्सलाम वालेकुम ये भी कर सकते हो, अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह भी कह सकते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात भी कह सकते। तो अस्सलाम वालेकुम काफी था अगर आप पूरा नहीं मतलब जो है ना वो लिख सकते, तो अस्सलाम वालेकुम पूरा बस काफी था। मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जो स्वाद हो या कुछ का जो है ना वो इस तरह हो, मुझसे हो नहीं सकता। मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मौका दे रहा है आपसे पर दुरूद भेजने का और मैं इसमें वो करूँ। तो इस वजह से मतलब ये है कि जिसमें गुंजाइश है गुंजाइश है, अस्सलाम वालेकुम सिर्फ कह दूँ, मतलब ये कह दें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम काफ़ी है, उसके लिए WRWB की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो बल्कि एक और बात भी है, कुछ पेशावर की कुछ उस्तानियाँ मुझसे बात हुई थी तो उन्होंने लिखा मुझे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा लिखा, मैंने जवाब दिया वालेक। फिर मैंने लिखा कि मैंने आपको इसलिए वालेक लिखा है कि वालेका में औरत और मर्द का फर्क है, वालेकी हो जाएगा, वालेकी औरत के लिए वालेकी है। तो इसमें चूंकि लोगों को अक्सर पता नहीं औरतों को भी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं या वाले का कह देते हैं, हालांकि औरतों के लिए सलाम क्या है, वाले की वाले के सलाम अरबी है ना, अरबी तरीका है। तो उसमें जो है ना एक तो ये मतलब ये कि एक ये फर्क मैंने कहा आपको मालूम हो जाए, और दूसरी बात ये कि सुन्नत पर अमल हुआ। सुन्नत पर अमल कैसे हुआ? सुन्नत पर अमल ये हुआ कि आप सलाम ने फरमाया था कि सलाम जब करो तो बेहतर जवाब दो उसका, सलाम जब कोई कर ले तो उसका बेहतर जवाब दो। उसको अस्सलाम वालेकुम तो आप कहे तो आप कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो आप कहे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू बेहतर जवाब। तो जब आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू किया तो आपने सारी चीज़ें पूरी कर ली, तो मैंने आपकी तरफ सारी चीज़ें लुटा ली वाले के कर। जिसमें सबक है कि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे बाज़ दफ़ा ये आदाब में और बहुत कुछ लोग बढ़ा देते हैं ना, बल्कि जो पता नहीं क्या है कि आपके ऊपर जानना आराम होती है, अपनी तरफ अपनी ये खिलाफ सुनत है, ये खिलाफ सुनत है। बस जितना है बस उतना वो कर लो अगर सुनत पर अमल करना है। तो ये मतलब ये है कि ये चीज़ मैंने मैंने कहा कि आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता, बहरहाल उनको फिर समझ आ गई। खैर अब ये कह रही है, कह रही हज़रत आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इंशाल्लाह। आई रिसेंटली टोल्ड माई वाइफ दैट शी कैन स्टार्ट द 40 days जिक्र विद द इंटेंशन दैट इफ शी कम्प्लीट इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड शी कैन कंटिन्यू फर्दर बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शंस। She has completed one day of zikr. Now I am getting doubt that I should not have told her to start without consulting you. I apologize and I hope that you can please guide me on what to do. Can she continue or should I tell her to stop? I apologize for my mistake if there has been in this case. Jazakallah khair. MashaAllah, badi achhi baat hai, baat hai usne bilkul sahi ki hai. अगरचि मैंने इसकी इजाज़त दी है सबको कि कोई भी शख्स ये जो पहला वाला जिक्र है 40 दिन का ये किसी को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये मतलब ये है कि इसमें कुछ और ऐसी बात नहीं है जैसे कोई नुकसान का अंदेशा हो। हाँ जी, तो ये जिक्र कोई भी 40 दिन तक कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता 40 दिन पूरे पर इन्फॉर्म हमें करना है, फिर इन्फॉर्म हमें करना है ताकि उसको अगला, क्योंकि अगले उसके बाद फिर दवाई काम मिलना शुरू हो जाता है, तो दवाई तो परेशान ही दे सकते हैं। तो बात तो उसने सही की है, इजाज़त इसलिए मांगना बेहतर है ताकि बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं, गरीब के हालात ऐसे होते हैं कि उनको इस बात का कहना उससे नुकसान होता है, अंदेशा होता है, होते हैं हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसी सूरत में कंसल्ट करने में बहुत फ़ायदा होता है। मसलन एक साहब मुझसे बैत हुए तो उसने मुझसे पूछा अगले हफ्ते, शाह साहब मेरी बीवी पर्दा नहीं करती, क्या मैं उसको कह दूँ? मैंने कहा हरगिज़ नहीं कहना, हरगिज़ नहीं कहना। मैंने कहा सिर्फ आपने एक काम करना है कि आप उसको हर इतवार को मजलिस के लिए लाया करें, इसके लिए आप तरगीब दे दिया करें, बस आपका काम यह है कि उसको मजलिस के लिए हर इतवार को लाया करें, यह आपकी मेहरबानी होगी। बाकी एक उसको ना आपने पर्दे के लिए कहना, आपने बैत के लिए कहना है, क्योंकि हालात अपने अपने होते हैं, बार दफ़ा बड़े बारीक टाइज होते हैं, उसके साथ मसाइल हो जाते हैं। तो खैर उन्होंने इस पर अमल कर लिया। 3 महीने के बाद उस खातून ने एक ही दिन 2 ऐलान कर दिए। उसने कहा मैं बैत करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा बैत कर लिया। उसके साथ ही उन्हें सबको कह दिया मैं शरी पर्दा करना चाहती हूँ, उसके बाद शरी पर्दा शुरू कर लिया। उसी दिन से सुबहान अल्लाह मुकम्मल कम्प्लीट पर्दा, और माशाल्लाह इस पर बहुत इस्तकामत के साथ चल रही। अब उनकी फैमिली में चूंकि पर्दे का इतना रिवाज नहीं था पहले से, तो उसने जब पर्दे की बातें शुरू की तो इनके मामू वगैरह जो थे ना, उन्होंने कहना शुरू किया कमाल है, अपने शेख से पर्दा नहीं करती हमसे, और मतलब जो है बाकियों से पर्दा करवाना चाहती। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं शेख से पर्दा नहीं करती, पर्दा तो हमने सीखा ही शेख से, वो तो खुद पर्दा करना चाहते हैं, तो पर्दा तो हमने सीखा ही उससे, ये कब हमने कहा है कि मतलब जो है ना वो उससे पर्दा नहीं है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे भी बैत हो गए। उनको जब पता चल गया, क्यों असल में बात ये होती है ना कि लोगों के मिजाज में जहनों में कुछ बातें बैठी होती हैं, तो उनको पहले निकालना होता है, उसके बाद फिर सारे मसाइल हो जाते हैं। तो अगर इस किस्म की बातें हों तो कंसल्ट करना बेहतर होता है, जैसे उस शख्स ने किया वैसे इसकी जात मैं सबको दे चुका हूँ। या करीम, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हज़रत मुर्शिद दामत बरकात, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं इंशाअल्लाह। हज़रत जी दाम कल गुज़श्ता नींद के गलबा की वजह से मेरे चंद इजाफी तस्बीहात रह गए थे, अव्वल तो आपने बात पूरी नहीं की उजाइफ तस्बीहात से आपकी क्या मुराद है, वो तो पूरा बताना चाहिए। और दूसरी बात है कि नींद के गलबा की वजह से इसलिए रह गए थे कि आपने उसको टाइम ही वो दिया है जो नींद का होता है, तो नींद का जो टाइम होता है तो उसमें जो आप करेंगे तो उसमें नींद ही आएगी। हमारे तबलीगी जमात के जो हजरात से अक्सर जिक्र रह जाता है, उसकी वजह वो यही होती है कि ये सारा दिन मशगूली होती है उनको, जिक्र वो क्या होता है वो गश्तों में और तालीम में और दूसरी चीज़ों में जो तबलीगी जमात के काम होते हैं, और ये जिक्र करते हैं जिस वक्त ये सोने का टाइम होता है, मसल्ले पे जिस वक्त मतलब जो है वो बिस्तर पर जाने का टाइम होता है, बिस्तर पर बैठ के जिक्र करते हैं। तो बिस्तर पर बैठ के कोई जिक्र करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, फिर जाहिर सोएगा, उसने सोने की नियत कर ली। हमें खुद जो है ना मतलब है, अमीर साहब ने कहा कोई साहब थे, उसने इस तरह जो है ना वो थे मतलब जिसमें नींद की पोजीशन होती है उस तरह बैठे हुए थे, तो उन्हें कहा आपने तो पहले से नींद की नियत कर ली तो आप क्या तालीम सुनेंगे, आप इस तरह बैठ जाए कि अगर आपको नींद आ जाए तो सीधे गिर जाए ताकि आप ना सोएं। तो सबको इस तरह बैठने को कहा कि इस तरह ना बैठो जिसमें इंसान को नींद आए, रिलैक्स अंदाज में ना बैठो। हाँ जी, तो अब ये जो बात है मतलब ये अगर जो चीज़ अहम है, जैसे अमीर साहब ने तालीम को सुनना अहम करार दिया तो इसके लिए वो तरीका बता दिया, तो हमारे नज़दीक जिक्र इलाजी जो है ना वो अहम है, तो उसके लिए फिर हम तरीका बताते हैं कि भाई किस तरीके से बैठो और किस तरीके से और किस वक़्त आप बैठो, ये सारी चीज़ें फिर हम बताते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर अमल करना चाहिए तो इंशाल्लाह फिर ऐसा नहीं होगा। एक हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक जारे जो तफसीर है मारिफुल कुरान, उससे एक इकतबास एक खातून ने भेजा है। और बाज़ रात ने फरमाया कि लफ्ज़ ज़ुलूम व जहूल उस जगह बोले बाले के माने में है, बतौर महबान खिताब के कि उससे अल्लाह जल्ल शानु की मोहब्बत और उसके मुकाम कुरब की जस्तजू में और किसी अंजाम को नहीं सोचा। इस तरह ये लफ्ज़ पूरी बनी नौ के लिए भी हो सकता है। तफसीर मजहरी में मुजद्दद अफसानी रहमतुल्लाह व दूसरे सूफिया किराम से इस तरह का मजमून मनकूल है। तो उनने फरमाया कि इन्नुकान ज़लूम जूला की क्या मतलब है, इसमें आशिक की कैसे मिसाल दी गई है, यानी कि इंसान को अल्लाह से कितना इश्क था कि उस बड़ी जिम्मेदारी उठाने पर राजी हुआ, यानी कुरान की जिम्मेदारी। ये तो तफसीर है उमान फुरकान में शायद की तशरीह के आखिर में लिखी गई। तो मैंने जवाब दिया कि ये आलम अरवाह की बात है। अब भी अगर नफ्स नफ्स मुतमिन हो जाए तो इंसान अल्लाह ताला का आशिक है। ये नफ्स ने गहरा है हजरत मुझे सामने फरमाया ना कि असल में रूह तो आशिक था, लेकिन नफ्स में जब आ गया तो नफ्स ने उसको बांध लिया, वो अपना गुलाम बना लिया। तो इस वजह से जो ना वो नफ्स जो चाहता है वो वही काम करता है। तो अगर अल्लाह याद आ जाए फिर दोबारा जिक्र अस्कार मरा के बाद से, तो फिर वो अल्लाह ताला का आशिक बन जाता है और अल्लाह के इश्क के लिए की वजह से फिर वो नफ्स का इलाज करना शुरू कर लेता है। हाँ जी, तो ये जज्बे कस्बी इसको कहलाते हैं। तो अगर नफ्स नफ्स मुतमिन हो जाए तो अल्लाह का आशिक है। जज्बे कस्बी में इसी इश्क को तो उजागर किया जाता है। तो उन्होंने कहा क्या मैं समझ गई। सवाल भेजे हैं मुझ साथी ने अभी अभी गालिबन। हजरत आपका कोई बयान बराह रास्त सुनते वक्त आप कोई ऐसी बात करें मसरिया के बारे में, बदनजरी के बारे में, किसी बुराई के बारे में, अगर मैं ये समझूँ कि इस वक्त ये बात मेरे बारे में की जा रही है, मैं ख़राब हूँ, मैं गंदा हूँ, ये बात सोचकर मैं इस वक्त या बाद में भी परेशान रहूँ, तो क्या मेरे सोच में भी शैतान का वसवसा शामिल हो सकता है? इन शेख की बात जो मैंने सुनी और सोची कि मेरे बारे में है, तो इसमें भी शैतान का वस हो सकता है कि मेरे अंदर शैतान मायूसी लाए और मैं सोचूं कि मेरे बारे में सारी बातें हो रही हैं। हजरत पता नहीं मैं सही सवाल कर सकूं या नहीं। ये कहते हैं अपने नफ्स के ऊपर बदगुमान होना चाहिए और दूसरे के ऊपर नेक गुमान रखना चाहिए। तो अगर शेख किसी की बात तंबीहन कोई कर रहे हैं तो उसमें अगर अपने आप के ऊपर बदगुमानी है तो अच्छी बात है कि आपने आदमी समझे कि मेरे बारे में बात हो रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इससे मायूसी हो जाना ये समझ में नहीं आता। मायूसी में नहीं आनी चाहिए बल्कि इलाज की तरफ तवज्जो करना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आदमी समझे कि बल्ले मुझ में मर्ज है तो फिर इसके इलाज की तरफ तवज्जो करना चाहिए। तो शेख को बता दे तो अगर वो आपके अंदर नहीं होगी तो बता दे कि आपके अंदर नहीं है। हाँ जी, मतलब यार ये तो मैं किसी और के लिए कह रहा था, लेकिन अपने बारे में बदगुमानी करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्त उससे मायूसी नहीं होनी चाहिए। क्यों, वजह क्या है, जब मेडिकल टेस्ट होता है किसी के ब्लड का, उसमें कोई बीमारी निकल आए तो क्या ख्याल, वो क्या करते हैं, मायूस हो जाता है और सबको छोड़ देता है या क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी, क्या करते हैं डॉक्टर साहब इलाज के लिए? हाँ जी, टेंशन तो होता है, परेशानी तो होती है, वो तो फितरी बात है, वो तो हो गए, इंसान है हम। लेकिन उस टेंशन की वजह से इंसान इलाज तो नहीं छोड़ता ना। हाँ जी, किसी को पहली दफा शुगर डायग्नोज हो जाए तो कितने लगता है। हाँ जी, लेकिन फिर क्या करता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताता है कि भाई कोई इतना खतरनाक बीमारी नहीं है, इसका इलाज भी है, उसका परहेज भी, तो इलाज भी सिखा देता है परहेज भी सिखा देता है, फिर अगर वो डॉक्टर की मान के चलता है तो कभी ठीक भी हो जाता है, और अगर ठीक होने के काबिल ना हो तो कम से कम दोबारा आगे बढ़ता नहीं है, ज़्यादा नहीं होता और कम से कम ज़्यादा नुकसान नहीं करता। तो ये बात तो होती। सवाल नंबर दो, हज़रत अल्लाह पाक ने फरमाया जिसको मेरे जिक्र ने मेरे से सवाल करने से रोका, मैं उसको सवाल करने वालों से बेहतर और ज़्यादा अता करूँगा। हज़रत सवाल अल्लाह पाक ही से तो करने को कहा ही है, सवाल अल्लाह पाक से तो करने को कहा गया, अल्लाह पाक से ही हमें मांगना है, बंदों से सवाल करना हराम है, फिर किससे सवाल करें? असल में इसमें तो ये बात नहीं है कि आप सवाल करें नहीं, इसकी मानियत तो नहीं है, सिर्फ एक तरीका बताया है कि जिस वक़्त आप जिक्र करते हैं तो जिक्र की वजह से अल्लाह पाक आपको याद रखते हैं, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तो आपके मसाइल खुद अल्लाह ताला को तो पता है, तो आपके मसाइल हल होने लगते हैं। सिर्फ ये बताया है, ये नहीं कि मतलब यूँ कह सकते हैं कि अपने मसाइल को हल करने का एक टेक्निक सिखाया है, ये नहीं कि आप अल्लाह पाक से मांगे नहीं, शौक से मांगे, क्यों ये कहा है कि आप मांगे नहीं, लेकिन अगर आप मांगते और वही चीज अगर आपको दूसरे तरीके से मिल रहा है तो क्या है, तो उसी तरीके से मांग के ले ले, कोई और अच्छा तरीका किसी ने समझा दिया उस तरीके से ले तो क्या है। तो ये जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको ख्याल में रखना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत पिछले हफ्ते मक्तूबात शरीफ में हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के एक मकतूब शरीफ में सारे स्वाब के बारे में जो फरमाया गया है, तो इसके बाद हम इस्लाही जिक्र से पहले जो सारे स्वाब करते हैं क्या इसमें कोई तब्दीली करें या इस तरह सारा स्वाब करते रहें? वसलाम। हज़रत ने ऐसा अल स्वाब के लिए जो फरमाया था उसमें ये था कि जो हमने अभी तिलावत किए, हम इसमें यही करते हैं ना, हम जो तिलावत किए उसका सवाब आप सल्लम को, सारे पैगम्बरों को, सारे सहाबा किराम को, हाँ चारे चारों सौ मशाइख को, हमारे वारदात को पहुँचाए, तो हम इसमें हम करते हैं, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है, वो तो हम करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उसमें हम लोग आप सल्लम पर जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप सल्लम तक पहुँच ही जाता है, तो ख़ास बात तो इसमें हो गई, आप सल्लम वाली बात तो उसमें माशाल्लाह आ गई कि आप ख़ास तौर पर आप सल्लम को दुरूद शरीफ पहुँचा देते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ना मतलब ये है कि इस सारे सवाब भी कर लेते हैं, उसमें भी सब मतलब शामिल हो जाते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मोहतरम शाह साहब, आप हजरत को ये बात बतानी थी कि कई दिनों से तबीयत में उदासी आई है, दिल बहुत परेशान है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, ज़िंदगी बोझ सी लग रही है, 45 मिनट का मरकबा जा रही है लेकिन इसमें भी दिल नहीं लग रहा, बहुत अजीब ख्वाब आ रहे हैं, आजकल नमाज से छुट्टी है, इसमें मोहतरम जनाब शाह साहब दुआ रहनुमाई फरमाएँ, मेरे हक में दुआ भी फरमाएँ। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएँ कि आया ये पहली दफा इस तरह हुआ है या पहले भी इस तरह होता रहा है। अगर पहले भी इस तरह होता रहे तो इसको फिर हम किसी और रंग में देखेंगे, और अगर पहली दफा इस तरह हो गया है तो फिर हम इसको और रंग में देखेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल में इसका जवाब चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، بسم الله رب حازم داود تمت الصلاة كما تأتي محمد بسم الله. يورب كسي يورب ملك میں ایک عرب ساتھی ہے، ہمارے ساتھ تربیت کا تعلق ہے. उसने मुझे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम शेख, आई हैड स्टॉप जिक्र फॉर मोर देन 2 वीक्स, आई नीड टू रिस्टार्ट जिक्र, व्हाट शुड आई से? मैंने जवाब दिया यस यू शुड स्टार्ट दिस अगेन. उसने ओके कैन यू सेंड मी व्हाट टू से अगेन? मैंने जवाब व्हाट जिक्र यू वर डूइंग एट दैट टाइम? उसने मुझे लेके भेजा तो मैंने कहा देट वॉज द उसने कहा देट वॉज द लास्ट. मैंने कहा ओके स्टार्ट दिस अगेन. फिर उसके बाद उसने कैन वी मेक देम लिस बिकॉज दे आर मच ऑन मी. हाँ जी भाई पुरानी बात, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. मैंने कहा इफ इट इज लिस देन इट इज जिक्र ओनली, इफ इट इज मोर देन इट इज मुजाहिदा आल्सो. एंड अल्लाह सेज والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, جو میرے راستے میں محنت و مشقت کرتے مجھ تک پہنچنے کے لیے میں ان کو ضرور بے ضرور راستے ہدایت کے راستے سجاؤں گا. اس نے کہا اوکے شیخ, بڑا خوش ہو گیا. ہاں جی وہ نہیں ہوتا, وہ دونوں ہاتھ اس طرح جو کرتے ہوئے اس طرح چیز بیچ. مقصد میرا یہ ہے کہ بات تو بالکل سمپل ہے, اپنی ساتھ انسان فائدہ وہ نقصان اپنا دیکھے اس کے مطابق عمل کرے. تو یہ واقعتاً اگر ذکر انسان کے اوپر بوجھ بن جائے علاج ذکر وہ نہ کر سکے اس وقت کرنے سے اس کے دو فائدے ہوں گے, ایک اس کا ذکر والا فائدہ اور ایک اس کا مجاہدہ والا فائدہ, یہ دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر صرف اور مزے کے ساتھ کر رہے تو صرف ذکر والا فائدہ ہوگا. ہاں جی میرے خیال میں اس پر میں روکتا ہوں کہ بنیادی چیز تو ہو گئی ہو کیونکہ وہ والا سیکشن جو نمبر ہے وہ ہو چکے ہیں, اب یہاں پر تو چپ جاتے دوسرے نمبر میں. تو ابھی ٹائم بھی تھوڑا ہے ذکر کر لیتے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا ہو 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 الا ہو لا الہ الا ہو الہ الا ہو لا 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 الہ الا ہو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق اللهم صل على سيدنا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي عين الناس كبيرا اللهم توفي أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما أتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وأزب غيظ قلبي واجدني من مزرعة الفتن ما أحييتنا اللهم لقني حجة الإيمان عند الممات ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته ودعاه اللهم إني أسألك العفو والعافية في دوني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وأمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أسألك بنور وجهك الذي أشرقت لأشرقت له السماوات والأرض وبكل حق ولك وبحق السائلين عليك أن تقيلني وأن تجيرني من النار بقدرتك اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنبي واخزي شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني وجلني في الندي الأعلى اللهم اقيني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم رب السماوات السبع وما ظلت ورب الأرضين وما قلت ورب الشياطين وما ظلت كل جار من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى زجارك وتبارك اسمك لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اغفر لي وحدي وارزقني وعافني وحدي لما اختلف فيه من الحق بإذن اللهم اجعل في قلبي نورا في بصر نورا وفي سمع نورا في أيمي نورا والشمال نورا وخلفي نورا من إمامي نورا وجلي نورا وفي أسمي نورا في لحمي نورا وفي لحمي نورا وفي شان نورا في بشر نورا في لسان نورا وجل في نفسي نورا وعزم لي نورا وجل لي نورا وجل من فوق نورا من تحت نورا اللهم آتي نورا اللهم افتح لنا باب رزق رحمتك وسهل لنا باب رزق اللهم اعصمني من الشيطان اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم انعشني واهدني وارزقني واهدني صالح الأعمال وصالح الأعمال وصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي صالحا ولا يصرف سيئا إلا أنت اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك الناس يدي بيدك يا ماض في حكمك عدل في قضاك أسألك بكل اسم ولك أسألك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك
او استأثرت بي في الغيب عندك ان تجعل القران العظيم عربي قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم لا جبرائيل وميكائيل واسرافيل واله ابراهيم واسماعيل واسحاق عافين ولا تسلط احد من خلقك علي بشيء لا طاقه لي به. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وغني بفضلك من سواك. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري. وانا الباعث الفقير المستيس المستجير الوجل المشفق المقر المعتز بذنبي اسالك مسك المسكين مسألة المسكين وابتل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من خذت لك رقبته وفادت لك ابرته وزل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجرني بدعائك شقي وكن بروف رحيما يا خير مسؤولين يا خير المعطين. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين. الى من تكلم الا ما تهدمني يتهاجمني قريبي ملكت امري ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي غير عافيتك وسولي. اللهم نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلبي ويسقينا صادقا حتى أن أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ولزم من المشهد بما قسمت لي. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم إني أعوذ بك من كرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن جار السوء في دار المقامات في النجاة البادية يتحول وغلبة العدو وشماتة الأعداء ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فبئس البطانة وأن نرجع لعقابنا ونفتن ديننا ومن الفتن ما ظهر وما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم.